हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पिया की मौत का बदला लेने के लिए तेज सिंह राणावत मुंबई आया हुआ था। मुंबई में वो वहाँ के सबसे बड़े डॉन जफर सिद्दीकी से मिला और उसे युग के बारे में बताया। भले ही तेज सिंह राणावत युग के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन जैसे ही उसने डेविल कहकर युग का जिक्र किया, जफर सिद्दीकी सब समझ गया था। युग अंडरवर्ल्ड में डेविल के नाम से जाना जाता था और न केवल इंडियन माफिया बल्कि रशियन, इटालियन और भी कंट्रीज की माफिया उसके अंडर में थी। ऐसे में जफर सिद्दीकी युग से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने राणावत को युग के खिलाफ कुछ न करने के लिए कहा और उसे अपने यहाँ से भेज दिया। मिस्टर राणावत क्लब से बाहर निकल चुके थे। भले ही जफर सिद्दीकी ने युग के मामले में उसकी मदद ना की हो, लेकिन फिर भी उसके दिल से बदला लेने का ख्याल अभी भी नहीं निकला था। राणावत ने अपने खास आदमियों को मैसेज करके किसी जगह पर बुलाया और फिर कुछ खुद वहां पर पहुंच गया। कुछ ही देर में वो सब किसी क्लब के प्राइवेट रूम में थे। वहां आते ही राणावत ने अपने आदमियों से कहा, मेरी बेटी को मारने वाला इंसान माफिया में एक बहुत बड़ा नाम है। जफर सिद्दीकी ने उसके मामले में मदद करने से मना कर दिया है। जफर सिद्दीकी तो क्या, इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं करेगा। कुछ भी करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे या आप भी उस डेविल के नाम से डरते हो। राणावत के पूछते ही कुछ देर के लिए वहाँ पर चुप्पी छा गई। उसके आदमी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से जो उनका हेड था वो तेज आवाज में बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिया बेबी हमारे लिए भी उतनी ही खास थी। वो आपकी बेटी थी। हम उसकी मौत को जाया नहीं होने दे सकते। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हमें किसी डेविल से डर नहीं लगता। बाकी के आदमी भी एक सुर में बोले। उन सब के हाँ कहते ही पीत सिंह राणावत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और साथ ही उनकी आंखें भी नम होने लगी। उसके आदमी उसके लिए इतने वफादार थे कि इतने बड़े माफिया से भी नहीं डरते थे। ये पता लगने पर वो भावुक होने लगे। तेज सिंह राणावत उस आदमी के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, सत्यराज, आज सच में मुझ पर गर्व हो रहा है। आज भी याद है जब तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हारी चचा ताऊ ने घर से निकाल दिया था और तुम मेरे पास आए थे। उस वक्त तुम 12 साल के थे। मैं भी कुछ नहीं भूला हूँ। इस अनाथ को आपने सहारा दिया है, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। आज अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया है, सत्यराज ने जवाब में कहा। वो लगभग 32 साल का था और देखने में लंबा चौड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी मूछें थी, बाकी दाढ़ी बिल्कुल साफ की हुई थी। फिर वो आगे बोला, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन मुझे पिया की मौत का पता चला था, उसके अगले दिन ही मैंने अपने आदमी को राणा मेंशन में काम पर लगा दिया था। वो अभी आता ही होगा। उसे मैंने सारी जानकारी इकट्ठा करके लाने के लिए कहा था। मैंने भी अपने कुछ आदमियों को राणा मेंशन के बाहर लगाया था। तुम्हारा आदमी हमारे काम आ सकता है। कब तक आएगा वो, तेज सिंह राणावत ने पूछा। सत्यराज उन्हें जवाब में कुछ कहता, उससे पहले उसका लगाया हुआ आदमी आ गया था। वो राणा मेंशन में गार्डनर की जॉब पर लगा था और उसका नाम नरेश था। नरेश को देखते ही सत्यराज ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या खबर है वहाँ की? किसी को पता तो नहीं चला ना कि तुम वहाँ हमारे लिए काम करते हो? नहीं, उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ है, नरेश ना में सिर हिलाते हुए कहा और फिर वहाँ की अपडेट देने लगा। आपकी बेटी को मारने के बाद वो लोग वापस घर नहीं आए थे और लंदन चले गए थे। कल रात को ही लंदन से उनके परिवार के कुछ लोग आए हैं। मैं ठीक से उन्हें जानता नहीं हूँ। युग सर नहीं आए हैं, उनकी पत्नी ही यहाँ पर आई है। मुझे ज्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन सुबह गार्डन में मान्या मैडम की उनकी वाइफ के साथ बहस हो रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि युग सर ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। नरेश से सारी बात जानने के बाद राणावत को काफी हैरानी हुई। वो उसके घर पर आए थे तब युग कृषा की बहुत केयर कर रहा था और अब यहाँ उसे कुछ और ही सुनने को मिल रहा था। राणावत ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसे बहुत प्यार करता है। उसी के चक्कर में उसने मेरी बेटी को मारा था और वो उस लड़की को कैसे छोड़ सकता है? बोलते हुए मिस्टर राणावत हाइपर होने लगे। सत्यराज ने उन्हें शांत करवाते हुए कहा, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए सर, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए, हमारे पास एक गोल्डन चांस है। यहाँ पर उसने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया है और हम उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसी की वजह से आपकी बेटी की जान गई थी। हमारा पहला टारगेट वही होगी। सत्यराज के समझाने पर राणावत समझ गया था। उसने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, उस लड़की पर पूरी नजर रखो और जब भी वो अकेली हो या अकेले कहीं भी जाए या गार्ड्स के साथ ही बाहर क्यों न जाए, हमें बताना, वो उस लड़की का आखिरी बिन होगा। नरेश ने राणावत की बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद सत्यराज ने उसे कुछ पैसे दिए और नरेश उन सबको सलाम करके चला गया। सत्यराज ने अपने बाकी आदमियों को भी काम पर लगा दिया था। वो सब राणा मेंशन के बाहर एनी टाइम पहरा देने वाले थे। सत्यराज से सब कुछ फाइनल करने के बाद राणावत वहाँ से अपने होटल में चला गया। उसने कसम खाई थी कि जब तक वो पिया की मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक वो अपने घर में कदम नहीं रखेगा। वहीं कृषा ने जैसे तैसे करके सारा को अपने साथ रखने की परमिशन ले ली थी। कृषा और सारा से अलग होकर हरलीन ने युग से बात की तो उसे भी सारा के वहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कृषा ने पूरा दिन सारा के साथ बिताया इसलिए उसे युग की कमी का इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन रात को डिनर के बाद वो अपने कमरे में अकेली थी और उसे युग की याद आ रही थी। वहीं युग अपने रूम में बैठकर कृषा को देख रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पूरे दिन में एक बार भी कृषा के मुंह से युग का नाम तक नहीं निकला था। कृषा ने पिलो को हक किया और सोने की कोशिश कर रही थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठी और चिढ़ते हुए पिलो को फेंक दिया। कृषा उठकर बैठ गई और अपना सिर पकड़कर बोली, अजीब मुसीबत है यार, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कौन सा हर रात वो मुझे लोरी गाकर सुनाता था। वहीं कृषा की बात सुनकर युग ने आईज रोल करके कहा, रियली कृष, इतनी जल्दी तुम भूल गई कि मैं तुम्हें कितने प्यार से अपनी बाहों में सुलाता था और इसी वजह से अब तुम्हें नींद नहीं आ रही। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें खुद से दूर भेज दिया, इसी बहाने तुम्हें ये तो एहसास होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया हूँ। कृषा को नींद नहीं आई तो वो उठी और रेफ्रिजरेटर की तरफ गई। उसने आइसक्रीम निकाली और खाने लगी। कृषा को आइसक्रीम खाते देख युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, आइसक्रीम तक तो ठीक है लेकिन कहीं फ्रिज में अल्कोहल तो नहीं रखा हुआ है ना। सोचते हुए युग की आंखें बड़ी हो गई। युग ने इस बारे में जानने के लिए हरलीन को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि कृषा ने अपने पीछे से एक बॉटल निकाली। वो एक बियर की बॉटल थी और आइसक्रीम खाते हुए कृषा उसमें से सिप ले रही थी। कुछ ही देर में कृषा को चढ़ने लगी तो वो चिल्ला कर बोली, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं खाऊंगी और ये भी पियूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते युग। बोलते हुए कृषा ने बॉटल की तरफ देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे पीने लगी।
बाकी चीजों में इतनी सीधी है लेकिन पता नहीं इस मामले में ये कैसे बिगड़ गई, युग ने सिर हिलाकर कहा। अब हरलीन को कॉल करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि कृषा पहले ही ड्रिंक कर चुकी थी। पूरी बॉटल खत्म करने के बाद कृषा कमरे से बाहर आई और वो सीधा मान्या राणा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। युग उसे ऐसा करते हुए देखा भी रहा था लेकिन उसने किसी को भी बताया नहीं, बस वो दूर से बैठा सब एंजॉय कर रहा था और उसके फेस पर इविल स्माइल थी। अब आएगा ना असली मज़ा, इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा, युग ने बड़बड़ा कर कहा और कृषा के नेक्स्ट मूव का वेट करने लगा। इंडिया में रात के लगभग 12 बज रहे थे तो वहीं युग के यहाँ 6:30 ही बजे थे। कृषा मान्या राणा के कमरे के आगे आई और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हुए बोली, कहाँ हो तुम, बाहर निकलो तुम मोटी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ मोड़ने की, मैं माफिया प्रिंसेस हूँ, मेरा पति माफिया किंग बनने वाला है, फिर डेविल की वाइफ का हाथ पकड़ने की हिम्मत तुम कैसे कर सकती हो, बाहर निकलो, चुड़ैल कही की। बोलते हुए कृषा अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। कृषा दरवाजे को इतना बुरी तरह से पीट रही थी कि उसके साथ साथ उसके पास वाले रूम में मौजूद बंधन भी नींद से जाग चुकी थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई। घर में काम कर रहे हाउस हेल्पिंग स्टाफ ने हरलीन और हर्षवर्धन जी तक भी ये खबर पहुँचा दी थी कि कृषा नशे में क्या कर रही है। हर्षवर्धन और हरलीन में से कोई वहाँ आता उससे पहले मान्या ने दरवाज़ा खोला, उसके साथ विराट भी था। उन्हें देखते ही कृषा हल्का सा झुकी और कहा, हेलो ससुर जी, कैसे हो आप, फिर उसने विराट के चेहरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, बुरे ही होंगे, इस चुड़ैल के साथ कोई कैसे खुश रह सकता है, जब देखो इसके आगे पीछे घूमते रहते हो, कोई काम नहीं है क्या आपके पास। कृषा की बात सुनकर विराट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो वहीं मान्या भी कृषा को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे अभी अभी, तुम मुझे चुड़ैल बोल रही हो, जब सुन गया है तो बार बार क्यों पूछ रही हो, लगता है दिमाग के साथ साथ अब कान भी खराब हो रहे हैं तुम्हारे, मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ, आगे से मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारी जान ले लूँगी मैं चुड़ैल, कृषा ने गुस्से में जवाब दिया और मान्या के पास आकर उसका गला पकड़ने लगी। कृषा के पास आते ही मान्या ने महसूस किया कि उसने ड्रिंक कर रखी है। मान्या ने कृषा को खुद से दूर किया और चिल्ला कर बोली, इस लड़की ने शराब पी रही है और तभी हमारे साथ बदतमीजी कर रही है। मान्या ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि सामने से हर्षवर्धन और हरलीन आ रहे हैं। मान्या की बात उनके कानों में पड़ी तो हर्षवर्धन के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, तो वहीं हरलीन को कृषा के लिए डर लग रहा था। युग सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कृषा की इस वक्त उनके सामने क्या इमेज बन रही है। वो इस तमाशा को अच्छे से एंजॉय कर रहा था। जो चीज वो कृषा के होश में रहते हुए देखना चाहता था, वो अब नशे में कर रही थी।